بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النمل آیت نمبر 32 سے 44 تک، جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں آیات، وہ پیچھے کی کنٹینیویشن ہے، اور اس میں ہم پڑھ چکے ہیں سلیمان علیہ السلام کا قصہ، کہ جیسے سلیمان علیہ السلام کے پاس ہدہد آیا تھا اور اس نے آ کے یہ بتایا کہ ایک ایسی جگہ پہ میں گیا ہوں، ایک ایسے ملک میں جہاں پہ ایک ملکہ رہتی ہے اور وہ لوگ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتے ہیں، سورج پرست تھے، سورج کی عبادت کیا کرتے تھے. اس کے اوپر مختصراً یہ کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا تھا اس ملکہ کی طرف، اور ملکہ نے جب خط پایا تو اس نے اپنے جو یعنی جو خاص خاص لوگ تھے ان کو جمع کیا، جو اس کے وزیر مشیر یا سردار یہ کہیں، ان کو جمع کیا اور اب ان سے مشورہ کر رہی ہے کہ کیا کیا جانا چاہیے. دیکھتے ہیں آیت نمبر 32. قالت یا ایہا الملأ، کہنے لگی اے سرداران قوم. افتونی فی امری، افتونی مطلب مجھے مشورہ دو کسی خاص مسئلے کا جواب، جیسے ہم فتویٰ مانگتے ہیں تو کوئی خاص مسئلہ ہوتا ہے جس میں ہم جواب چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اس نے اب اپنے ارکان حکومت کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ میں مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے رائے دو. ماں کن تو قاطی آتن امرن حتی تشہدون، نہیں ہوں میں قطعی فیصلہ کرنے والی اس کام میں جب تک کہ یہاں تک کہ تم حاضر ہو میرے پاس، یعنی جب تک کہ آپ خود نہ مجھے کوئی مشورہ دیں، تمہارے مشورے کے بغیر میں نہیں کوئی کام کروں گی، تمہارے بغیر میں کسی معاملے کا فیصلہ نہیں کرتی. اب یہ دیکھیں نا، اس سے کتنی زیادہ دل جوئی ہوئی ہوگی اور ہمت افزائی ہوئی ہوگی ان سرداروں کی. یہاں پہ آپ ملکہ کا کردار بہت ایز لیڈر بہت اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں کہ لیڈر کو کیسا ہونا چاہیے اور لیڈرشپ کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں. آپ اگر کسی ملک کے تو نہیں ہیں ملکہ یا کچھ، لیکن کسی گھر کی ٹاپ پہ ہو سکتی ہیں، یعنی اس کی لیڈرشپ آپ کے ہاتھ میں ہو، یا کسی ادارے کے ہو سکتے ہیں، یا کسی اور جگہ پہ اگر آپ کو ایسی پوزیشن ملتی ہے جس میں آپ کو کچھ لوگوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے، کیسے چلنا چاہیے. تو مشاورت بہت ضروری ہے. کہا جاتا ہے کہ ملکہ بلقیس جو تھی، اس کا نام بلقیس تھا، تو اس کی مجلس شورا کے ارکان 313 تھے، اور ان میں سے ہر ایک آدمی 10,000 آدمیوں کا امیر اور نمائندہ تھا. تو اور یہاں سے پتہ چلتا ہے مشورہ لینا ایک لیڈر کی بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے، اور اسلام نے مشورے کو خاص اہمیت دی ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مشورہ فرمایا کرتے تھے، حالانکہ آپ کو تو آسمانی ہدایات ملتی تھی، تو پھر آپ کو تو ضرورت ہی نہیں تھی کسی سے بھی مشورہ لینے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ امور میں صحابہ کرام سے مشورہ لیا کریں. اس سے صحابہ کی بھی دلجوئی تھی، عزت افزائی تھی. اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر چلے، تو پھر مشورہ لینا بہت ضروری ہوتا ہے. جو لوگ خود اکیلے اکیلے چلتے رہتے ہیں نا، وہ پھر زیادہ دیر قائم نہیں رہ پاتے. مشورہ لینے سے کیا ہوگا، سب ساتھ ملیں گے، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کے مشورے کے ذریعے آپ تک کوئی بات پہنچا دے جس طرف آپ کا ذہن نہ گیا ہو، ٹھیک ہے، اور جس سے آپ کو آسانی ہو جائے فیصلہ کرنے میں. تو جو اہم کریں، اہم کام کریں، اس میں کوئی مشورہ لینے میں حرج نہیں ہے. ذہین لوگوں کا بلکہ یہ طریقہ ہوتا ہے، और इससे इंसान तकबर में भी नहीं मुबतला होता, इसमें आजी है। तो बाज लोग मशवरा लेने को बहुत ही अपनी वो समझते हैं कि मैं किसे मशवरा लूं, मुझे मशवरों की जरूरत नहीं है, अपना मशवरा अपने पास रखो, इस किस्म की बातें ना वो तकबराना बातें होती हैं। तो कोई अच्छा मशवरा दे तो उसको कबूल कर लेना चाहिए खुले दिल के साथ। और बाज लोग कहते हैं जी औरतों से मशवरा नहीं करना चाहिए, औरतों की तो अकल ही नाकिस आ रही है। हालांकि यहाँ पे आप देखें कि ये औरत कितनी जहीन है, बाद में आप देखेंगे जो उसने फैसला किया बड़ी जहानत का फैसला है। और ऐसा नहीं है कि औरतें नाकिस अकल की होती हैं, हम उम्महातुल मोमिनीन को देख लें तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुदैबिया भी गए थे तो आपकी एक ज़ौजा मुहतरमा ने आपको मशवरा दिया था जिसपे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया था। उस वक्त तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को देख लें वो कितनी ज़हीन थी, बल्कि कई मर्दों की अकल से ज़्यादा उनकी अकल थी। तो इसलिए कोई आदमी अगर अपनी बीवी से मशवरा करता है, अपनी किसी घर की औरत से मशवरा करता है तो इसमें कोई हरज की बात नहीं, और इसको भी अपनी कोई तौहीन नहीं समझ लेना चाहिए। और आप देखिए अगर आप खुद से खुद फैसला करते रहेंगे ना मुकम्मल आपकी ही जिम्मेदारी बन जाएगी। अगर आप मशवरा ले लेंगे तो सब साथ होंगे आपके। अच्छा अब देखें यहाँ पे हमें मैनेजमेंट सिखाई जा रही है ना, कैसे हमें मैनेज करना होता है किसी टीम को। तो अब जो टीम है या जो उसके सरदार हैं वो क्या कह रहे हैं, आलू उन्होंने कहा नहनु उलू कुव्वतिन व उलू बासिन शदीद, हम कुव्वत वाले भी हैं और हम सख्त जंगजू भी हैं। यानी अगर आप जंग करना चाहती हैं तो हम पीछे नहीं हटने वाले, हमारी ताकत में कोई कमी नहीं है। लेकिन वल अमरु इलैकी फंजुरी माज़ा तामुरून तामुरीन, लेकिन फैसला जो फाइनल है वो आपके हाथ में है, आप देख लें क्या आप हुक्म करती हैं। यानी आप यहां देखें कि वो सरदार भी कितने अकलमंद थे, और जो भी मातहत हों उनका भी यही तरीका होना चाहिए कि मशवरा देने के बाद आजी का तरीका इख्तियार करें, ना कि मशवरा दें और उसके बाद मशवरे को इम्पोज करने की कोशिश करें, प्रेशराइज करें कि नहीं मेरी ही बात सही है बस आप यही माने। ये तरीका सही नहीं होता। कोई अगर आपसे मशवरा मांगता है आप अच्छी तरह मशवरा दें। देखिए मशवरे को भी कहा गया कि मशवरा देना भी अमानत है, तो अमानतदारी का सबूत दें कि सही मशवरा जो आपको आता है बस वो दें, लेकिन उसके बाद दूसरे के सर पे ना सवार हो जाए कि मेरा मशवरा मानो ऐसा ही करो। और अगर वो आपके मशवरे के उलट चलता है तो उसमें भी कोई नाराजगी की जरूरत नहीं है कि जी हमारी तो बात नहीं मानी, देखा हमने तो ये कहा था, हमारी बात माननी होती तो फिर ऐसे ना होता आज। और फिर उसके बाद तानो तशने करना या नाराजगियां लेके बैठ जाना कि हमारी नहीं सुनी जाती, यहाँ पे तो हमारे हम मशवरा देते हैं अपनी मर्जियां चलाते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। मशवरा मशवरा ही होता है, मशवरा ऑर्डर नहीं होता, याद रखिए। ठीक है, तो जब मशवरा दें उसके बाद दूसरे को डिसाइड करने दें। आपका काम सिर्फ ये होता है आपने अपनी राय दे दी, मशवरा एक राय है। ठीक है, यहाँ पे देखिए वो कितने अकलमंद है, कहते हैं जैसे आपका हुक्म हो फाइनल बात आपकी ही होगी। ये अदब है हमें भी सिखाया गया मशवरा देने का। अच्छा अब क्या होता है, वो अब मलिका क्या करेगी, हालत वो कहने लगी इन्नल मलूका इदा दखलू करियतन, जो बादशाह होते हैं ना उनका तरीका ये होता है कि जब वो किसी बस्ती में दाखिल होते हैं यानी हमला आवर होते हैं, किसी बस्ती को फतह कर लेते हैं तो क्या होता है अफसदूहा फसाद करते हैं वहां, वजालू आयजत अहलीहा अदिल्ला वकदालिका फयफालू, और वो इसी तरह करते हैं कि वहां के इज्जतदार लोगों को जलील कर देते हैं। मुअज्जिज़ीन को जाहिर है जब भी आपने हिस्ट्री उठा के देख लें, जब भी कोई कौम किसी पे हमला आवर होती है तो वहां पे किस तरह की तबाही मचाती है, वहां पे कैसे उनकी औरतों की इज्जतें पामाल की जाती हैं, कैसे मर्दों को कत्ल कर दिया जाता है, कैसे कईयों को कैद किया जाता है, और उनकी ईंट से ईंट बजा देते हैं, उस शहर का सत्यानाश कर देते हैं, तबाही मचा देते हैं, कुछ नहीं वहां का रहता। तो वो अब इस बात को सोच रही है, जहीन बहुत थी वो, इस बात को सोच रही कि देखो ठीक है तुम लोग बड़े ताकतवर हो, लेकिन जंग इसका मतलब कोई अच्छी चीज नहीं होती। वो जंग को पसंद नहीं करने वाली थी, कत्लो गारतगिरी को पसंद नहीं करती थी। कि जंग में याद रखें, कोई कौम अगर फतह भी कर लेती है किसी इलाके को, तब भी फतह फतह नहीं होती, क्योंकि उनका अपना भी तो कोई नुकसान हुआ होता है ना, अपने भी लोग मारे गए होते हैं। तो नहीं, उसमें ना दूसरी तरफ का ना इस तरफ का कोई ये नहीं कह सकता हाँ हम बड़े अच्छे रह गए, हम बड़े फायदे में रह गए, क्योंकि जिसने फतह कर लिया उसका भी नुकसान है, दूसरा तो वैसे ही हार गया होता, उसको तो नुकसान ही नुकसान है। तो जंग कभी भी अच्छी चीज नहीं होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग का शौक करने से मना किया कि जंग का शौक ना करो कि अच्छी जंग हो जाए बड़े मजा आएगा, नहीं, या जंग हो जाए तो हम इनको दिखाएंगे हम ऐसे करेंगे, ये जज्बाती होके फैसले करने वाली चीज नहीं होती। यहां से पता चलता है कि मलिका अपनी कौम की बड़ी खैरख्वाह थी, वो जज्बाती फैसला करने वाली नहीं थी। और आज अगर उम्मत मुस्लिमा को देखें तो सिर्फ जज्बाती नारे रह गए, नारा तकबीर अल्लाह अकबर, हम ये कर लेंगे, हम ऐसे कर देंगे, ना ईमान है ना कोई तैयारी है, दोनों ही चीजें नहीं है, तो लड़ेंगे किससे। लेकिन इसके बावजूद हमारी डींगें देखें, आपने तारीख में देखा होगा, मैं नाम क्या लूं, आप सबको पता है कि एक मुल्क के जो भी बादशाह था उसने इतनी डींगे मारी, आ जाए हम ये कर देंगे, इनका वो कर देंगे, वो कर देंगे, और उसके बाद जब दूसरी कौम आ गई तो फिर उसके बाद उसका पता नहीं चल रहा था कि किधर जाके छुप गया। तो ऐसी डींगे मारने से, ऐसे बड़ी बड़ी बातें करने से, जज्बाती बातें करने से, इससे जंगें जीती नहीं जाती, बल्कि इसके अंदर अवॉइड करना चाहिए जितना भी कि जंग ना हो। अब यहां पे मलिका को कैसे पता चल गया कि अगर वो उन्होंने फतह कर लिया या वो अंदर घुस आए तो फंसा तो मलिका के ऊपर जो खत था ना उसकी हैबत थी, वो आखिर नबी का खत था, बिस्मिल्लाह से शुरू हुआ था, बड़ा रोब था इस खत में। खतूत की भी एक हैबत होती है, मसलन आपके पास सदर साहब का खत आ जाए तो, या आपके बॉस का ही खत आ जाए तो बड़ी मतलब हाथ कांपने लगते हैं, पता नहीं इसमें है क्या। इसे मलिका समझ गई थी, समझदार थी। अच्छा, अब यहाँ पे हमें एक और सबक मिलता है कि हमारे सामने भी बाज दफा, चाहे हम घर की ही एक लेवल पे बात करें, तो ऐसा होता है कि एक तरफ जंग का ऑप्शन है और एक तरफ अमनो अमान है, लेकिन अमनो अमान के अंदर हमें नीचे झुकना पड़ेगा सर, हमें लड़ाई को अवॉइड करने के लिए आजी दिखानी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, लेकिन ये मलिका की बात हो रही है, एक बड़ी जबरदस्त कौम की मलिका थी, ऐसे ही छोटी मोटी बात नहीं थी। सोचे जिसका आर्शी, जिसका तख्त ही इतना जबरदस्त था, तो ऐसे कुछ छोटी सी कौम नहीं थी, और उसके लोग भी कह रहे हैं हम बड़े जंगजू हैं, तो इट मीन्स के वो बड़े यानी अच्छे खासे लोग थे, कोई कमजोर से ऐसे लोग नहीं थे। लेकिन स्टिल उसने जंग को पसंद नहीं किया, हालांकि उसको पता था कि अगर मुझे जंग से अवॉइडेंस करनी है तो उसके लिए मुझे झुकना ही पड़ेगा, तो उसने झुकने को गवारा कर लिया था, जंग का नहीं उसने ऑप्शन सेलेक्ट किया। यहाँ पे हम भी देखें, हम इसकी जगह पे होते तो हम क्या कहते, हम लड़ेंगे और हम लड़ के दिखाएंगे और अब पता चल जाएगा उसको कि हम हैं कौन और फलां और फलां। वो कितनी हिकमत वाली थी, जब घरों में भी जंगे होती हैं ना, लड़ाइयां होती हैं, तो उसमें फायदा किसी का भी नहीं होता। अगर आप चढ़ाई करके किसी के ऊपर अपना सिक्का मनवा भी लेते हैं, आप अपनी बात मनवा भी लेते हैं, दूसरे को हरा भी देते हैं, तो इन चीजों से इज्जत नहीं इंसान की बनती। और लड़ाई में हमेशा ही कोई खैर नहीं होती। तो अब उसने जो फैसला किया वो सुने कि क्या फैसला उसने किया। अब मशवरा तो उन्होंने दे दिया, मगर वो ये नहीं कर रही कि अच्छा ठीक है तुम लोग स्ट्रांग हो तो चलो हम चलते हैं बस लड़ने के लिए, बल्कि उसने क्या फैसला किया, वह इन्नी मुरसिलतुन इलैहिम बिहदीयतिन, मैं भेजने वाली हूं उनकी तरफ हदिया, फनादिरतुम बिमा यरजुल मुरसलून, फिर देखती हूं किस चीज के साथ लौटते हैं भेजे हुए। उसने किस चीज को चूज किया, बजाय जंग करने के उसने कहा मैं तोहफे तहाइफ दे के भेजती हूं, देखती हूं कि वो क्या करते हैं, उनका रिस्पॉन्स क्या होता है। यानी क्यों देखना चाहती थी रिस्पॉन्स, इसलिए कि अगर तो वो बादशाह हुए जिनका काम सिर्फ हकूमतों को फतह करना है, मुल्कों को फतह करना है, तो हमारे कीमती तरीन तोहफे देख के वो फिर हमारे से जंग करने का या हमारे पर हमला करने का इरादा छोड़ देंगे। और अगर वो वाकई अल्लाह के नबी हैं और तबलीग कर रहे हैं तो फिर वो हदीये वगैरह से राजी नहीं हो जाएंगे, फिर तो उनका मिशन ही कुछ और है ना। तो वो जानना चाहती थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का इखलाक क्या है, वो वाकई अल्लाह के भेजे हुए कोई वो हैं नबी या वो एक सिर्फ बादशाह है। ठीक है, अब देखें हमारे जैसे सरदार होते तो फिर वो तो नाराजगी होकर बैठ जाते कि खुद अपनी ही करनी थी तो फिर हमसे मशवरा क्यों लिया था, बस ये तो अपनी ही चलाती रहती हैं। वो देखिए ना बिल्कुल ही डिफरेंट उसने फैसला किया मलका ने, उसने आजमाने का फैसला कर लिया और बड़ा अच्छा उसका ऑप्शन था ना, ये किया कि एकदम जंग पे चली गई, ना ये किया कि एकदम ही सरेंडर कर दिया, बल्कि जरा हिकमत के साथ चलिए कि जरा मैं देखूं तो सही कि हैं क्या ये। तो अब उसने क्या किया, बहुत कीमती तोहफे लिए, यानी ऐसे अपने एक पूरा समझ लें वफद तैयार किया, बेशुमार जिसमें गुलाम थे, लौंडियां थी, और उनको कीमती तरीन लिबास पहनाए हुए थे और उनके हाथों में थाल दिए हुए थे जिनमें हीरे जवाहरात और सोने की ईंटें और ये सब कुछ था। अच्छा अब क्या था, ये बात तो हुदहुद ने जल्दी से जाके बता दी सुलेमान अलैहिस्सलाम को कि जी ये वो उन्होंने ऐसा ऐसा किया। वो कहा था ना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कि तुम खड़े होके देखना वहां पे कि वो क्या करते हैं, उसके बाद एक तरफ हट के जरा उनके रिस्पॉन्स चेक करना। तो उसने आके इतला दे दी कि भाई वो तो ऐसे ऐसे आ रहे हैं वो लोग। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि उन्होंने एक तैयारी करने का हुक्म दिया, वो उधर से काफिला चला, इधर से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो यानी महल को फरमाया कि बेहतरीन तरीके से सजा दो और कई मील तक सोने की ईंटें बिछा दो, बहुत सारे खजाने जमा किए जाएं और उनको यानी डिस्प्ले किया जाए। और इसका मकसद क्या था कि वो जब तोहफे लेकर आएंगे ना, वो छोटे छोटे तोहफे होंगे और ये खजाने बिछे होंगे यहाँ पे और महल बेहतरीन तरीके से सजा होगा, तो फिर उनको खुद ही समझ आ जाएगी कि ये बादशाह जो है ये माल के लिए, इसको कोई लालच नहीं है, इसके पास तो खुद इतना माल है, हम क्या इतने छोटे से तोहफे लेकर आ गए, उसके सामने क्या हैसियत है हमारे तोहफों की। तो इसका मकसद, इसका मतलब ये माल कमाना नहीं है कि मैं इनके ऊपर इसलिए हमला कर दूं कि इनके जगह या इनकी चीजें मैं ले लूं। तो अब ये सारी तैयारी हो गई, अब देखें अगला सीन आता है सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार का। फलम्मा जाया सुलेमान, तो जब वो आ गए सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास, कौन वो जो सारा डेलीगेशन था, जो सारा वफद था हदीये लेके, काला उसने कहा, किसने, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, आ तुम्हें दूना नहीं भी मालिन, क्या तुम मेरी मदद करते हो, मुझे मदद देते हो माल के साथ, यानी माल मुझे दिखा के तुम मुझे कुछ राम करना चाहते हो, मुझे कुछ राजी करना चाहते हो, मेरी मदद करना चाहते हो कि मैं कोई माल का लालची हूं, तो मुझे माल दोगे हदीये दोगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। फमा आतानी अल्लाह खैरुम मिम्मा आताकुम, जो अता किया मुझको अल्लाह ने वो बेहतर है उससे जो उसने अता किया तुमको, यानी नबुव्वत दी है मुझे, हिकमत दी है मुझे, इल्म दी है, वो उससे बेहतर है जो तुमको अता किया। बल अंतुम बिहदीयतिकुम तफराहून, बल्कि तुम ही अपने हदीये के साथ तुम खुश हो, यानी तुम ही रख लो, हो सकता है ये तुम्हारे कोई काम आ जाए, तुम्हारे माल में इजाफा कर दे, मगर मुझे इसकी जरूरत नहीं, मुझे अल्लाह ने बहुत ज्यादा बेहतर कुछ दिया है इस सारे माल से, तो तुम अपने तोहफों से खुद ही खुश हो जा, मुझे नहीं चाहिए। देखिए ना, यहां से पता चलता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकसद क्या था। ये तोहफे तहाइफ लेना नहीं था, और इससे जाहिर है ऐसे तोहफों से तो उनको मकसद ये था कि उनको खरीदा जा सके, कि इसके बाद जाहिर अगर ये तोहफे एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमला नहीं करेंगे, खामोश होकर बैठ जाएंगे। ये एक तरह से एक यानी कॉम्प्रोमाइज था, और ऐसे तोहफे लेना फिर जायज नहीं होता जिनसे फिर इंसान हक बात ही ना बोल सके। वो तो तोहफे नहीं, वो तो रिश्वत है, जैसे सरकारी अफसरों को और इनको दी जाती है कि हमारा टैक्स ना काटें, हमारा ये ना करें। नहीं जी, ये तोहफा है, ये बच्चों के लिए मिठाई के पैसे हैं, ये फलानी चीज है, तो ये सब रिश्वत होती है। इसलिए कि रिश्वत तो है ही वो चीज ना, कि जिसमें किसी के ओहदे को, किसी की पोजीशन को सामने रख के उससे कोई काम निकलवाने के लिए कुछ दिया जाए। अब चाहे वो अफसर है, चाहे वो कोई उस्ताद है कि कोई नंबर लगा लें, यानी हमारे लिए नंबर, हम मुझे मार्क्स दे दें ज्यादा, या मैं इनके पास जरा कोई मेरी वैल्यू बन जाए, मेरी तरफ तवज्जो ज्यादा हो इनकी, ये सारे फिर रिश्वत ही की किस्में आ जाती हैं। क्योंकि हदिया तो बेलॉस होता है, जिसमें कोई लालच नहीं होता कि अब ये मुझे ये करे मेरे साथ, या ये दे मुझे, या मेरे लिए ये काम कर दे। और अब पता है ना, रिश्वत लेने वाला और देने वाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दोनों ही जहन्नमी है, दोनों ही जहन्नमी है, दोनों को मलून करार दिया। तो रिश्वत में और तोहफे में बड़ा फर्क है। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि चलो तोहफा ही है ना, तोहफा तो नहीं लुटाना नहीं चाहिए, देखे ना नहीं करनी चाहिए तोहफे को, तोहफे को कबूल कर लेना चाहिए। यहां पे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तोहफों को लौटाया है इसलिए कि ये तोहफे उनको हक बोलने से रोक रहे हैं, ये रिश्वत है। सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकसद दीन की सरबुलंदी था, कोई हदीये कबूल करके उन्होंने अपनी मुमलिकत नहीं बढ़ानी थी, ये बादशाहों का काम होता है। फिर तो जो मलका कहती है और उसकी कौम जो कर रही थी, ठीक है, फिर इसका मतलब है उनको करने दे। इसीलिए उलमा को भी तोहफे लेने से यानी एक तरह से वो अवॉइड किया करते थे, क्योंकि लोग तोहफे देते थे और फिर अपने हक में फतवे दिला लेते थे, या हमारे खिलाफ ना बोलना मिंबर पे बैठ के, इसलिए तोहफे देते थे, चलें आपको जी हज पे ले चलें, चलें आपको उमरा करा देंगे, लेकिन उसके बाद आप भी हमारा ख्याल रखिएगा। यानी आप ये ना हो कि आप भी कुछ वहां पे बैठ के ये कहें कि सूद हराम है, ये कहें कि हराम कमाओ नहीं, ये कहें कि शराब बिजनेस हराम है, ये कर, ये नहीं फिर आपने क्या ना, जाहिर है उनका मुंह बंद कर देते। तो ऐसे तोहफे लेना जायज नहीं है कि जो आपका मुंह बंद कर दे, कोई आपके यानी ये सारे तोहफे ही हैं, कोई आपकी बच्चे की शादी पे खाना दे रहा है, कोई बड़े बड़े कैश के वो तोहफे दे रहा है आपको किसी भी ओकेजन पे, ईद पे, इस पे, नहीं जी जब हमारी तरफ से है बस, उसके बाद वो आलिम क्या करेगा, वो कह सकेगा कि तुम्हारा बिजनेस सही नहीं है, वो कह सकेगा कि तुम सही नहीं कर रहे। और इसी तरह इसको हर चीज में ही ले ले, नहीं आप हमारे हक में फतवे दें, बस हमारी जो हम कह रहे हैं बस वही कहें, इसके लिए तोहफे तहाइफ देना। तो यहां पे उन्होंने वापस कर दिए उनके तोहफों को, और बल्कि फरमाए इरजी इलैहिम, वापस जाओ उनकी तरफ, तोहफे लेके जाओ वापस, फलाना तियन्नहुम बिजुनूदिन, तो अब तो हम तुम्हारे ऊपर लश्कर ही लेकर आएंगे, ला किबला लहुम, नहीं मुकाबला उनके लिए, यानी तुम उनका, तुम नहीं ताकत रख सकते फिर उनका मुकाबला करने, बिहा इनसे निपटने की, इन लश्करों के साथ मुकाबला करने की। वला नुखरी जन्नहुम मिनहा, और अलबत्ता हम जरूर निकाल देंगे उनको इससे, किससे, इस मुल्क से, किन को, तुम्हारी यानी कौम के लोगों को, अदिल्लतन, जिल्लत के साथ, वहम सागिरून, और वो छोटे होकर रहेंगे। यानी अगर तुम बात नहीं मानते हो और ऐसे ही सही है तो ठीक है, फिर तुमने क्या सोचा कि तुम तोहफे देके मुझे राजी कर लोगे, बल्कि जाओ वापस, अब तो हम लश्कर लेकर आएंगे। यानी एक ये जंग की अनाउंसमेंट थी, तो लगता है तुमने बात ऐसी नहीं माननी। काला, कहा ये किसने कहा? ये भी सुलेमान अलैहिस्सलाम। अब उनको तो वापस भेज दिया ना, तो अब सुलेमान अलैहिस्सलाम जो अब मशवरा कर रहे हैं अपने सरदारों से, अपनी उनके सामने एक बात रख रहे हैं। अच्छा, एक बात और जो रह गई कि जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तैयारी की थी उसका थोड़ा सा बता दूं कि उन्होंने जिन्नात को हुक्म दिया था कि दरबार से तकरीबन 30 मील की मुसाफत में सोने चांदी की ईंटों का फर्श बिछा दो और रास्ते में दोनों तरफ अजीबुल खलकत जानवरों को खड़ा कर दिया जाए। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने डेकोरेट किया था, यानी आप सोचेंगे क्या है, तमाम होगा। और अपने दरबार को भी ऐसे डेकोरेट कराया कि दाएं बाएं 4,000 सोने की कुर्सियां थी। तो जब उन्होंने ये देखा ही तो उनको समझ आ गया कि ये तो बहुत बड़ी ममलिकत है इनकी। वो तो अपने तोहफों से शर्मा गए कि हम क्या लेके चले हैं। उन्होंने तो जिन्नात की जब सफ़े ही देखी तो मरूब हो गए। अब इससे हमें पता चलता है कि बाज़ दफ़ा जब कोई कौम ताकतवर होती है ना, तो उसकी ताकत ही इनाफ रोब होती है दूसरी कौमों के ऊपर। जब कोई खुद ही मिस्कीन और नीचे होंगे तो फिर क्या वो किसी के ऊपर रोबदारी कर सकेंगे। इसलिए मुसलमान को अपनी ताकत को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि फिर जंगों की भी जरूरत नहीं होती जब वो ताकत में ज्यादा होते हैं। आज देखें दुनिया की जो कौमें ताकत में बढ़ के हैं, दुनिया में तरक्की याफ्ता हैं इल्मी मैदान में और टेक्नोलॉजी के मैदान में और इनमें, तो दूसरी कौमें उनके ऊपर हमला करने का सोच भी नहीं सकती और उनका एक बात कह देना ही काफी होता है। और यहां पे हमें यह भी पता चला, देखिए मालो मता को कभी भी दीन से अफजल ना समझे। यहां पे उन्होंने माल को रिजेक्ट किया, तोहफों को रिजेक्ट किया। पांच दफा हम जुबान से ना भी बोले ना तो हमारा अमल कह रहा होता है कि सबसे बड़ी चीज हम माल को ही समझते हैं, दीन और इल्म और ये सब वो कोई इतनी बड़ी चीजें नहीं है। यहां पे वो यानी जो नेमत दीन है इसको वो बड़ी चीज फरमा रहे हैं कि फमा आतानी अल्लाह खैरुम मिम्मा आताकुम। इससे क्या पता चला, यानी जो मेरे पास है ना, जो यानी दीन है, हिकमत है, इल्म है, नबुवत है, वो उससे बेहतर है जो तुम्हें दिया गया। उनको क्या दिया गया था, माल ही था ना उनके पास, लेकिन जो मेरे पास है ना वो बेहतर है। ये नहीं मतलब है कि मेरे पास तुम्हारे से ज्यादा माल है, नहीं, जो मैं दिया गया हूं अल्लाह की तरफ से। तो उन्होंने बड़ी नेमत दीन को करार दिया, अल्लाह की तौहीद को करार दिया, इल्म और हिकमत को करार दिया। हमें भी कभी भी दीन के मुकाबले में दुनिया को प्रेफरेंस नहीं देनी चाहिए। रूहुलमानी में एक किस्सा आता है सुलेमान अलैहिस्सलाम का कि इनको ऐसी, आपको पता ना, सल्तनत अता की गई थी कि इस जैसी हुकूमत कभी भी नहीं किसी को ना मिली ना मिलेगी। जिस वक्त उनका दरबार होता था, तख्ते शाही इतना वसी होता था कि सोने चांदी की 6 लाख कुर्सियां बिछती थी, परिंदे उन पर साया करते थे, हवा को जासूसी का काम सुपुर्द किया हुआ था कि रुए जमीन में जहां कहीं हमारे मुतल्लिक कोई बात की जाए हमें पहुंचा दो। और जब तख्त पे दरबार मुनक्किद होता था तो हवा को हुक्म दिया जाता था कि तख्त को लेकर उड़ जाए, चुनाचे हवा लेके उड़ जाती थी तख्त को। ऐसी कभी किसी, हमने तो फेरी टेल्स में ही कभी सुना होगा कि अलिफ लैला की कहानी के भाई तो उड़ रहा है कालीन या ये, हम तो कभी आज तक सोच ही नहीं सकते। ऐसी आज दुनिया की हुकूमतें कई बड़ी तारीफें होती हैं, लेकिन देखें उनकी हुकूमत कैसी थी। तो एक दफा ना इसी शानो शौकत के साथ उनका तख्त जा रहा था कि किसी ने ताज्जुब से कहा, सुबहान अल्लाह माजा उदिया आले दाऊद, क्या शानो शौकत दी गई है आले दाऊद को, सुबहान अल्लाह इसके ऊपर का। तो उसी वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस आदमी को बुला के पूछा, तुमने क्या कहा? वो पहले तो डरा, फिर तसल्ली देने पर बताया कि मैंने ऐसे ऐसे कहा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आगे से पता है क्या फरमाया, तस्बीहतुन वाहिदतुन खैरु मिम्मा उदिया आले दाऊद, एक दफा तस्बीह करना, सुबहान अल्लाह पढ़ना इस सब से बेहतर है जो आले दाऊद को दिया गया, यानी सारी बादशाहत से बेहतर। क्यों ये फरमाया था? इसलिए कि बादशाहत तो खत्म हो जाएगी, अब खत्म हो गई ना उनकी बादशाहत, उनके साथ ही थी, खत्म हो गई। लेकिन वो जो एक दफा का सुभान अल्लाह बोला हुआ ना, वो मीजान में कहां तक जाएगा? कयामत के दिन भी वो सुभान अल्लाह मीजान में तुल रही होती होगी, वो नहीं खत्म होगी। इंसान खत्म हो जाते हैं, हुकूमतें खत्म हो जाती हैं, पैसा खत्म हो जाता है, ओहदे खत्म हो जाते हैं, वो जो अल्लाह का जिक्र है, जो अल्लाह की तारीफ है, जो नेक आमाल है, जो दीन है, उसका दीन के लिए जो उसकी कोशिशें हैं, ये अल्लाह के यहां सेव हो जाती हैं। तो आखरत के लिए किया हुआ अमल चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, चाहे वो एक सुभान अल्लाह क्यों ना हो, वो इस कसीर पे, जो दुनिया की कसीर है, इस पे इससे ज्यादा बढ़ के है, इससे ज्यादा बेहतर है। क्योंकि ये कसीर आरजी है, ये कसीर खत्म हो जाने वाली है, मगर उस नेक अमल का अजर खत्म नहीं होगा, क्योंकि उस नेक अमल का अजर जन्नत में दर्जों की सूरत में मिलेगा, आगे बढ़ के दर्जा हो जाएगा उसकी, जिसने एक सुभान अल्लाह भी ज्यादा कही हो। तो कभी भी मामूली ना समझे जो अमल आप आखरत के लिए करते हैं, वो जो जी फलां के पास इतनी जॉब है, मैं पीछे रह गई, मैं तो बस इन्हीं कामों में लगी हुई हूं, मेरा तो सारा टाइम इन्हीं में चला जाता है, मैं सेलों से पीछे रह गई, मैं जॉबों से पीछे रह गई, मैं इस चीज से पीछे रह गई, मैं भी जॉब कर लेती तो मुझे इतना मिल जाता। नहीं, जो आप कर रहे हैं, अगर आखरत के लिए आप कुछ जमा कर रहे हैं ना, वो बहुत बेहतर है उससे। ये जो दुनिया की छोटी छोटी ठीकरियां आप उनको जमा कर लेंगे, उससे बहुत बेहतर है। ये हमारी नजर जो है ना, अब फर्क हो जानी चाहिए जब हम कुरान पढ़ते हैं। तो अब जो सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने अपने दरबारियों से फरमाया, قال يا أيها الملأ, ऐ अहले दरबार, أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين, कौन तुम में से ऐसा है कि जो मेरे पास उसका तख्त ले आए इससे पहले कि वो आ जाए मेरे पास ताबेदार होके, वो मतियो के आ जाए। तो उनको वो अंदाजा था, पता चल गया था कि अब वो आएंगे ही आएंगे, वो मुकाबला करने की कुव्वत नहीं रखते, इसलिए उन्होंने पहले से इंतजामात किए। क्योंकि ये क्यों वो चाहते थे कि उसका तख्त लाएं? इसलिए ताकि सुलेमान अलैहिस्सलाम के मोजे का उनको पता चल जाए, उनको पता चल जाए कि ये नबी हैं। क्योंकि वो कोई बादशाह इतनी नहीं कर सकता कि कहां यमन है आप देखें, कहां फलस्तीन है, कितनी दूर है, हजारों मील, यानी यहां से जैसे कैलिफोर्निया चले जाए 5-6 घंटे तो आज भी जहाज में लगते हैं। तो उनके आने से पहले पहले तख्त यहां पे पहुंच जाए। अब देखें वो चलेंगे सवारियों पे, उनका चलना तो ज्यादा तेजी से पहुंचेगा, अर्श जो था उसका तख्त जो था वो तो इतने कहीं 80 हाथ आता है, तो कहीं और ऊपर से जड़ाओ सोने चांदी हीरे जवाहरात से, वो कितना हैवी था, और वो उस तख्त को 7वें महल में रखती थी, हर महल में ताले लगे हुए थे, एक महल के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे में चौथा, इस तरह से करके 7वें में जाके उसने बंद किया हुआ था, लॉक करके रखती थी। जाहिर बड़ा कीमती था ना। अच्छा, तो अब उन्होंने क्या फरमाया कि कौन है जो लेकर आए उसको? जाहिर उनके वहां पे जिन्नात भी थे और बड़े बड़े ताकतवर जिन्नात थे, और ये तख्त का लाना वो यानी एक दलील के तौर पे पेश करना चाहते थे कि मैं नबी हूं। काला इफरीत मिन अल जिन्नी, कहा एक बहुत बड़ा जिन था, दियो हैकल जिन, उसने कहा अना आतीका मेही कबला अन तकूमा, मैं ले आऊंगा उसको तेरे पास इससे कबल के तू खड़ा हो, मैं मकामी का अपनी जगह से। वो अपनी जगह से खड़े होने का मतलब क्या, उनका जो दरबार होता था सुबह से दोपहर तक होता था, तो जब बिफोर आपका दरबार यानी खत्म हो एंड हो, उससे पहले ही मैं ले आऊंगा, यानी दोपहर से पहले पहले मैं ले आऊंगा। वह इन्नी आलही लकवी अमीन, बेशक मैं अलबत्ता कुव्वत रखने वाला भी हूं, अमानतदार भी हूं। ये क्यों उसने कहा? देखिए, कोई भी जॉब आपने किसी को देनी हो ना, तो एक तो उस जॉब के लिए जो स्किल्स चाहिए वो होनी चाहिए, दूसरे अमानतदारी होनी चाहिए, अमानतदारी से काम करने वाला हो, ऑनेस्टली काम करने वाला हो। अगर इनमें से एक भी चीज मिसिंग हुई, मिसाल के तौर पे कोई अमानतदार तो है लेकिन उसके पास वो स्किल नहीं, यहां पे स्किल क्या चाहिए थी, यहां पे कुव्वत चाहिए थी, ताकत चाहिए थी उसको लाने के लिए। तो अगर कोई अमानतदार है लेकिन उसके पास अहलियत नहीं है, वो अहल नहीं है उस काम को करने का, तो काम नहीं हो सकेगा। अब आप कहें उसकी तो लंबी दाढ़ी है, इसको इलेक्शन में खड़ा कर दें तो ये इसको कामयाब होना चाहिए, इसको वोट दिया जाए। अगर उसके अंदर स्किल ही नहीं है लीडरशिप की, अगर क्वालिटीज ही नहीं है, तो वो काम सही कर ही नहीं सकेगा, वो चाहे बेचारा कितना भी दीनदार अमानतदार हो। देखिए ना, अबू उबैदा बिन जर्राह को भी बनाया गया था सिपा सालार, लेकिन वो काम नहीं कर सके थे हजरत खालिद बिन वलीद जैसा। हजरत खालिद बिन वलीद को ही फिर बनाया था क्योंकि उनके पास वो काम करने की अहलियत थी। अबू उबैदा बिन जर्राह जो थे वो यानी बहुत अमानतदार थे, बड़े अमीन थे इस उम्मत के, लेकिन उनके अंदर वो जंग को लड़ने वाली क्वालिटीज उस तरह से नहीं थी जैसे उन दूसरे सहाबी के पास हैं, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास। तो इससे पता चलता है कि देखें, एक अमानतदारी नहीं सिर्फ बल्कि अहलियत भी होनी चाहिए। हमेशा काम देते वक्त सिर्फ ये ना देखें हाँ ये तो बड़ा नेक है तो इसको दे देते, अहलियत भी देखें। ठीक है, दूसरी चीज, अगर अहलियत है लेकिन अमानतदारी नहीं तब भी काम बिगड़ जाएगा। अहल तो है लेकिन हेरा फेरी करेगा, बीच में से चीजें निकाल लेगा, चोरी कर लेगा, फ्रॉड कर लेगा, ये भी एक मसला होता है। तो ये दोनों चीजें होनी चाहिए तब काम सही हो सकता है, तब वो जॉब जो होती है ना वो सही तरीके से अदा होगी। अब उसने क्यों कहा कि मैं कवि हूं, इसलिए कि लाने के लिए कुव्वत चाहिए थी। और उसने क्यों कहा मैं अमीन हूं, इसलिए कि इतना कीमती तख्त है, अगर अमानतदारी ना हुई तो बीच में से कुछ ले उड़ेगा। ठीक है, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, कोई और लेकर आए।